ओम शांति। नेशनल कन्वेंशन ऑन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स के प्लेनरी सेशन 3 में मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं और साथ ही साथ मैं कॉम्प्लेक्स में जो बाहर हमारे डेलीगेट्स हैं उनसे भी मैं नम्र निवेदन करूंगी कि वह ऑडिटोरियम में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज का सत्र हम शुरू करते हैं और साथ ही साथ आज के इस सत्र के जो हमारे बहुत ही सीनियर और अनुभवी स्पीकर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के सेशन के चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस सत्र के हमारे ऑनर्ड गेस्ट मिस्टर महिंदर कुमार आहूजा जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप कृपया मंच पर आए। मिस्टर अर्जुन लाल जिंगर जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप भी कृपया मंच पर आए। मिस्टर मनसुख भाई पी बहुआ जी से भी और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगी कि सबका अभिनंदन हम तालियों के द्वारा करें। हमारे अनुभवी वक्ता सब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के हमारी कीनोट एड्रेस देने के लिए मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी से भी निवेदन करूंगी कि दीदी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मिस्टर नथन शाह जी से भी मैं निवेदन करती हूं कि आप कृपया मंच पर आए। मिस्टर नरेश यादव जी आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी निवेदन करूंगी कि मंच पर आसीन हमारे अनुभवी वक्ताओं का बुके और बैजेस के द्वारा भी स्वागत करें। मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी ये निवेदन करूंगी कि आप कृपया मंच पर आसीन हमारे अनुभवी वक्ताओं का पुष्पों के द्वारा और बैजेस के द्वारा स्वागत करें। हम सभी सब वक्ताओं का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि जब आप ताली बजा रहे हैं तो आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, तो इसलिए हम ताली बजा के सभी वक्ताओं का बहुत दिल से स्वागत करते हैं और आप सब डेलीगेट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। फिर से इस सत्र का जो थीम है वो बहुत ही सुंदर है कि पॉलिटिकल लीडर्स बिकमिंग हार्बिंगर्स ऑफ स्वर्णिम भारत। बहुत ही सुंदर विषय है स्वर्णिम भारत का। अगर हम भारत का चित्र सामने लाएं तो भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भी जब ये गीत सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत के साथ हमेशा महान शब्द जुड़ा है। आज भी अगर आध्यात्मिकता को ढूंढने लोग निकलते हैं तो उसके लिए केवल भारत देश ही है। बहुत से लोग आध्यात्मिकता के लिए आज भी भारत की तरफ ही आते हैं। अगर और भी भारत की अगर हम महिमा करने बैठे, एक समय में भारत में ही हीरा था, कोहिनूर हीरा केवल भारत में ही मिलता था, संपन्न था भारत, तो वो सोने की चिड़िया कहां चली गई? जैसे कहते हैं ना, ये खेल कल आज और कल का है। कल का भारत, आज का भारत और कल का भारत क्या होगा? तो ब्रह्मा कुमारी यही एक विजन लेकर के ये कार्य कर रही हैं कि हमको फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना ही है, भारत फिर से नंबर वन होगा। तो आप सब राजनेताओं को जो आज सभा में उपस्थित हैं, तो आप सब से मैं हाथ खड़ा करवाती हूं और पूछती हूं कि आप सब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में हमारा सहयोग देंगे? ये ब्रह्मा कुमारीज ने एक लक्ष्य लिया है कि हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना ही है। तो इस लक्ष्य से ये संस्था चल रही है और कई भिन्न भिन्न कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये चीज अगर हम नियम पूर्वक भी देखें तो प्रकृति के कुछ नियम हैं, जिस नियमों पर ये प्रकृति चल रही है। जैसे हम देखते हैं दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता ही है। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, कहते हैं आदि, मध्य और अंत। अंत के बाद फिर आदि होता है, और कोई भी चीज जब अति में चली जाती है तो उसका अंत होता है, लेकिन सिर्फ अंत ही नहीं, उसके साथ आदि भी जुड़ा हुआ है। बहुत लोग डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। पुरानी चीज को तोड़ा जा रहा है इसलिए नहीं कि दोबारा नया बनाना नहीं है, पुराना टूट रहा है, लेकिन उसके साथ एक नया मकान बन भी रहा है। तो आज के अनुभवी वक्ताओं को सुनने से पहले मैं चार लाइनें आपके सामने बताना चाहूंगी। नजरें तो वही हैं, नजारे बदल गए, कश्ती तो वही है, किनारे बदल गए, साथी तो वही हैं, सहारे बदल गए, हम तो वही हैं, हमारे बदल गए। ये वर्तमान का सीन है, लेकिन इस सीन को बदलना है हमें। तो सीन को परिवर्तन करने के लिए नजरों को बदल डालो, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती का मुख मोड़ दो तो किनारे बदल जाएंगे, साथी उसे बना लो तो सहारे बदल जाएंगे, बदल लो स्वयं को तो हमारे बदल जाएंगे। तो सार में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्वयं को सबसे पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो आज की जो हमारे इस थीम में जो कीनोट एड्रेस देने जा रही हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आकर अपना कीनोट एड्रेस दें। आप ब्रह्मा कुमारी के साथ पिछले 50 वर्षों से भी ऊपर से जुड़ी हुई हैं, 45 वर्षों से डेडिकेटेड रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली के बाद आपने विदेश में भी अपनी सेवाएं दी, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप, बहुत से विदेश के देशों में आपने चक्कर लगाकर, वैसे तो सबको गंगा के पास आना पड़ता है लेकिन आप ज्ञान गंगा देश विदेश में भ्रमण कर कई आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान देकर कई आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र 45 वर्षों से खोलती आ रही हैं। बहुत सी आत्माओं को मार्गदर्शन देती हुई आ रही हैं। वर्तमान समय आप अहमदाबाद में अंबावाड़ी सेंटर की संचालिका हैं और साथ ही साथ हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि गुजरात बहुत पास है तो हेडक्वार्टर्स में भी जो सेवाएं होती हैं तो उसमें भी आप बहुत उमंग उत्साह से आती हैं और अपनी सेवाएं देती हैं। मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई काम करती हैं, ये आपकी विशेषता है। हमें भी बहुत सौभाग्य मिला है आपके साथ सेवाएं करने का। जो मैंने आपके साथ सेवाएं करी तो मेरे लिए बहुत आप प्रेरणादायक रही हैं। इजी और बिजी, आपसे हमने सीखा, इतना कार्य करते हुए भी, इतने प्रेशर्स होते हुए भी सदा स्थिति खुश, उमंग, उत्साह, निर्माणता से भरी हुई हमारी ये दीदी हैं। बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है तो मैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी से कहूंगी कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना अनुभवी वक्त हमारे सामने बिताएं।
ओम शक्ति। आज की ये मंगल प्रभात हमारे लिए गोल्डन मॉर्निंग लेकर के आई है, क्योंकि जैसा कि हम सभी ने सुना है आज का विषय, और उस विषय के मंच पर उपस्थित महान विद्वान आत्मय भ्राता महेंद्र कुमार जी आहूजा, भ्राता अर्जुन लाल सिंगर, मनसुख भाई बुआ, सपना बहन, नाथन श्या, नरेश भाई यादव और आज के सत्र के चेयरपर्सन और आप सभी भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए भाइयों और बहनों, हमारा आज का विषय विभिन्न समुदायों को जो इस सृष्टि पर है भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए राजनेताओं का विशेष योगदान क्या है। शब्द याद आ रहे थे मैथिली शरण गुप्त के, मैं संदेश धरा पर नहीं स्वर्ग का लाया, पर इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। भारत की आजादी को आज 67 वर्ष हुए, साक्षी होकर के हम दृष्टिपात करें कि हम ऊंचाइयों में जा रहे हैं या गहराइयों में। सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है धरती का ये समाज बदले। अब कुछ ऐसा काम करो, निशा बदल दो, दिशा बदल दो, हर एक में नए प्राण भर दो और बदल दे उन राहों को जिस पर छाया माया का साया है। हिम्मत कर, खुद खुदा तेरी मदद में आया है। भारत के भविष्य निर्माता, लोकहित के पालक, जनहित के सेवाधारी, उनके सामने चैलेंजेस, मुश्किलें और समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन वो चैलेंजेस कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी है। जिसने हमको चांस दिया है अपने स्वयं में समाई हुई शक्तियों को, योग्यताओं को उजागर करने के लिए। दो दिन से हम सब सुन रहे हैं और सुनते हुए मैं समझती हूं स्वयं में समा भी रहे होंगे और अपने अंदर लक्ष्य को दृढ़ कर रहे होंगे, क्योंकि मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जब हर एक स्वयं कलाकार और चित्रकार बन जाए और अपनी इस चैतन्य मूर्ति को योग्य बनाए, तो स्वतः ही सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आज हर एक के अंदर एक विचार है, कुछ होना चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, लेकिन कौन सा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन, उस परिवर्तन को, उस लक्ष्य को हम अपने सामने विजुलाइज करें कि हम कैसा स्वर्णिम भारत चाहते हैं। जब तक उसको मैंने विजुलाइज नहीं किया है, तब तक उस समय की, उस गोल्डन ईरा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वहां होगा, प्रैक्टिकल में हम धारण नहीं कर सकते हैं। और उसको विजुलाइज करने के लिए बुद्धि की दिव्यता चाहिए, खुद का डिविनाइजेशन चाहिए, जो हमारे विचार श्रेष्ठ हो, सुंदर हो और दृढ़ता से संपन्न हो, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता उस स्वर्णिम युग की चाबी है। प्रश्न उठता है, हम सब क्या चाहते हैं? क्या सच में स्वर्णिम भारत चाहते हैं? चाहते हैं तो स्वर्णिम भारत के लिए उन योग्यताओं को मुझे जीवन में, उन लक्षणों को स्वयं में धारण करना होगा। और उस स्वर्णिम भारत के लिए राम राज्य शब्द बार बार रिपीट होता है। उस राम राज्य की क्या विशेषताएं थी, वो राज्य कैसा था। आप कहेंगे राम के राज्य में भी तो रावण था, सीता चुराई गई। सिर्फ थोड़ा विवेक को यूज करें। राम का राज्य तभी प्रारंभ हुआ जब रावण का वध हो गया, उसके बाद राम ने राज्य किया। अर्थात सारा ही आसुरी संप्रदाय इस धरती से समाप्त हुआ तब राम राज्य हुआ। और वो स्वर्णिम दुनिया, वो राम राज्य कैसा, वहां प्रकृति सतो प्रधान, वहां हर नर और नारी सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक है। ये क्वालिटीज हम जब स्वयं में धारण करें तब स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो। क्योंकि कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् सृजाम्यहम् संभवामि युगे युगे। क्या आज के सारे विश्व के वायुमंडल को देखते हुए ये बुद्धि स्वीकार करती है कि परमात्मा इस धरा पर होंगे और वो अपना स्वर्णिम युग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं? अवश्य, क्योंकि उस कलयुग के अंत के चिन्ह दिए गए हैं। गाय विष्टा खाएगी, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी और एक घर में सबकी मत भिन्न भिन्न होगी। धर्म और राज दोनों अलग होंगे। मुझे याद आता है डॉक्टर राधा कृष्ण राजेंद्र प्रसाद के वो शब्द, उन्होंने एक बार कहा था, अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति प्रायः नष्ट हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा, नीति बिगर की बुद्धि वैश्या समान है, बाहर से गाती है, नाचती है, बहलाती है, सबको खुश करती है, लेकिन अंदर से गिरावट है। हम सब क्या चाहते हैं? अंदर में जो रावण बसा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत, इन सब का खात्मा करें। और जब इसका खात्मा होगा, हम सब जानते हैं उसका स्थान गुण, मूल्य और शक्तियां स्वतः ही ले लेंगी। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश भी देता है और गर्माइश भी देता है, वृक्ष फल देता है, कुआं जल देता है, वो उनका स्वभाव है, नेचुरल नेचर है देने की। पहली पहली ये धारणा, हम उस सर्वशक्तिवान दाता के बच्चे हैं, दाता ही बन करके रहना है। किसी भी रूप से, चाहे रॉयलिटी से, मुझे मांगने की दरकार नहीं। अपने आप को इतना संपन्न और समृद्ध बनाएं कि किसी भी चीज की कमी हमारे जीवन में ना हो। तो कहा, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। जब हमारे विचार बेहद के होंगे, विशालता से संपन्न होंगे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके स्वयं के विचार, वाणी और कर्म तीनों दिव्य और श्रेष्ठ होंगे। उसका सोच एक सुंदर समाज की रचना, उसकी वाणी मधुरता, पॉजिटिविटी, एक्यूरेसी, उसके कर्म ऐसे होंगे जो अनेकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले होंगे। लीडर की विशेषता है वो करोड़ों को अपने पीछे लीड करता है। मैनेजर ऑलवेज पुश करता है। राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, राज्य सत्ता को चलाने के लिए धर्म सत्ता की आवश्यकता है। धर्म अर्थात रिलीजियन नहीं। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ रिलीजन इज रिटर्न टू ओरिजिन। स्पिरिचुअलिटी चाहिए जो हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम को ओपन करती है, और उस स्पिरिचुअलिटी के बिगर जीवन में मूल्यों को धारण करना, शक्तियों को धारण करना संभव नहीं है। हम सब निमित्त बने हुए हैं भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। पॉलिटिशियंस आर द फ्यूचर ऑफ भारत। उनके पास पोजीशन है, पावर है। उस पावर और पोजीशन को हम पॉजिटिविटी में यूज करें और उसको पॉजिटिविटी में यूज करने के लिए तीन बातें हम स्वयं में धारण करने का एक दृढ़ संकल्प करें। डिवोशन, डेडिकेशन और डिविनिटी। कोई भी कार्य करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। समर्पणमयता के सिवाय कोई भी कार्य संपन्न और सफल नहीं होता है। डिवोशन चाहिए। समय खुद के लिए नहीं, अन्य के लिए यूज हो। ऐसा डेडिकेशन हो तो क्या नहीं कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं और जो चाहे सो करवा सकते हैं। इसको हम ऐसे श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाएं जो कल नहीं, आज और अभी ही, जो हम सबकी आश है उसको पूर्ण कर सकते हैं। सिर्फ एक संकल्प की दृढ़ता चाहिए, क्योंकि हर एक जब चाह रहा है परिवर्तन हो, कौन हो, किसको परिवर्तन करना है, कौन चाहता है परिवर्तन, चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन किस प्रकार का हो। और कहने में सभी कह देते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, ये बदल जाए तो मैं तो बदला हुआ ही हूं, ये बदल जाए तो मैं तो ठीक ही हूं। हमारी उंगली औरों पर जाती है। एक उंगली सामने वालों की तरफ है लेकिन तीन उंगली मेरी तरफ है। आवश्यकता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, इंडिविजुअल, फैमिली, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी से गांव बना, गांव से नगर बना, नगरों से देश बना और देशों से विश्व बना है। एक प्रोफेसर का बच्चा। प्रोफेसर ने उसको इंडिया का मैप दिया, वो ब्लॉक्स की गेम थी, कहा तू सारा विश्व बना इससे जोड़ करके। अब छोटा बच्चा विश्व क्या होता है मालूम नहीं है, देश कहाँ है और किधर है मालूम नहीं है। ब्लॉक जोड़ते जोड़ते बहुत मेहनत कर रहा था, दो तीन ब्लॉक्स उल्टे हो गए, उसमें एक पर आंख है और एक पर नाक है, सारे ब्लॉक्स उल्टे कर दिए और वो इंसान बन गया। इंसान बना, विश्व बन जाएगा। आवश्यकता है मुझे स्व का परिवर्तन करने की, क्योंकि हम विश्व को बदलना चाहते हैं। इसलिए कहा बदल दे उन राहों को। तो कौन सी राह, कौन सी दिशा, मनोदशा भी बदलनी है और अपनी दिशा भी बदलनी है। अपने विचारों को सबसे पहले एक यू टर्न देना है कि हम क्या चाहते हैं। दुर्योधन के वो शब्द, जानता हूं धर्म क्या है, आचरण नहीं कर सकता हूं, जानता हूं अधर्म क्या है, छोड़ नहीं सकता हूं, कौन सी विवशता है। हम विवश नहीं है, हम कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, सिर्फ स्व के स्वमान में हम रहें, अपने उस अनादि स्वरूप में हम रहें, अपने आदि स्वरूप में हम रहें, वही हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर पहुंचाएगा। क्योंकि कहा है प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमको पीस भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। वो स्वर्णिम दुनिया हर प्रकार से संपन्न है, चाहे प्रकृति में है, चाहे संबंधों में है, चाहे नेचर में है, चाहे गुणों में है, लॉ एंड ऑर्डर में है, सब में संपन्नता है। मैं अपने आप से पूछूं, मेरे खुद के अंदर हार्मनी है? है हार्मनी अपने आप में, है कि नहीं? हाथ खड़ा नहीं कर रहे। अंडरस्टूड है, मेरे विचार वाणी और कर्म तीनों साथ साथ चलते हैं, या सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तीनों में अंतर है। जैसे कल बात चल रही थी, इलेक्शन के समय वायदे बहुत करते हैं और जब इलेक्शन में जीत गए, वायदे एक कोने में चले गए। क्या प्राप्ति होगी, क्या प्रैक्टिकल स्वरूप होगा अगर राज से नीति को अलग कर दिया जाए? तो वो सिद्धांतहीन, मृत प्राय हो जाएगी। आज वो परिस्थिति हम सबके सामने है, तो क्यों नहीं हम स्वयं का परिवर्तन करें और उस प्राप्ति के लिए कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आज हम चाहते हैं स्वर्णिम भारत। मैं जो हूं जैसा हूं अपने यथार्थ आंतरिक स्वरूप को पहचाने, इस बाह्य स्वरूप को नहीं देखे। ये देह का अभिमान और अहंकार कुछ करने नहीं देता है। हमको सच्चा सच्चा नेता बनना है, अर्थात यथार्थ नीतियों को धारण कर उस डिसिप्लिन से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, अपनी मॉरेलिटी और एथिक्स से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लीडर को अगर स्पेल आउट करके उसको डिफाइन करें, एल लव एंड लॉ का बैलेंस हो, हर क्षेत्र में, हर समय और हर स्थान पर। अकेला कायदा भी रूढ़ हो जाता है और अकेला लव भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कायदे में फायदा है। दूसरा ई, एंथुजियाज्म। हमेशा उमंग और उत्साह में रहें, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हमारा उमंग और उत्साह कम नहीं हो। मंजिल सामने है, उस तक मुझे पहुंचना ही है, कोई भी हर्डल्स मुझे पीछे नहीं हटा सकती है। इसलिए कहा, हिम्मत कर, तू तेरी मदद में खुद खुदा आया है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। थर्ड ए, अलर्ट एक्टिव एंड एक्यूरेट। जितना डिसिप्लिन में हम एक्यूरेसी और अलर्टनेस रखेंगे, खुद फॉलो करने में, दूसरा अपने आप फॉलो करेगा। डी, डेडिकेशन। कुछ करने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो त्याग नहीं है, उसमें बहुत प्राप्तियां हैं, बहुत संपन्नताएं हैं। अगरबत्ती को खुशबू देने के लिए जलना पड़ता है, जलेगी नहीं तो खुशबू नहीं देगी। जलना माना सैक्रिफाइस, और वो दिल से सैक्रिफाइस हो। हर जगह लिखा है मेरा भारत महान है, भावनात्मक नहीं, वास्तविकता में हम देखें। भारत सारे विश्व का गुरु है, सारा विश्व भारत से प्रेरणाएं लेता है, लेकिन हम भारतवासी क्या कर रहे हैं? सच में एक एक प्रेरणा की मूरत है। गांधी जी ने कहा था, माई मैसेज इज माई लाइफ। आज मेरा जीवन क्या मैसेज देता है? हम हैं समाज की सेवा करने वाले सेवाधारी। सेवाधारी का जीवन कैसा चाहिए, उसके मूल्य कौन से चाहिए, विशेषताएं कौन सी चाहिए, धारणाएं कौन सी चाहिए? जो लोक हित के लिए हो, जन का पालन करते हो, ऐसी उन योग्यताओं और विशेषताओं को स्वयं के जीवन में धारण करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं स्वर्णिम भारत कैसा होगा। विजुलाइज करिए, अपने सामने इमर्ज करें, वो भारत कैसा होगा, कैसा था, क्या बन गया है, गुमराह हो गए हैं, लक्ष्य बदल गया है, मार्ग बदल गया है, अप्रोच बदल गई है। जो कुछ भी मैं इकट्ठा करती हूं, मेरे साथ जाने वाला नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करके मिलियनर बन जाता है, अतिशयोक्ति है। राजनेता बिगर इन्वेस्ट किए मल्टी मिलियनर्स बन जाते हैं। आवश्यकता किस बात की है? धर्म की नहीं, स्पिरिचुअलिटी की। राजनीति में स्पिरिचुअलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो भारत कल नहीं, आज नहीं, अभी ही स्वर्ग भूमि बन जाएगा। और हम सब इसके लिए ही यहां इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो परमपिता परमात्मा शिव निराकार इस धरा पर आए हैं, अपने साकार माध्यम से आसुरी संप्रदाय को समाप्त कर देवी संप्रदाय की पुनर्स्थापना के लिए। हम उस ईश्वर पिता के सब बच्चे हैं, हम उसके सहयोगी बने, मददगार बने, क्योंकि विश्व का परिवर्तन करना है। उससे पहले मैं खुद को परिवर्तन करूं, और उसके लिए चाहिए स्वयं की दृढ़ता, क्योंकि एक गीत की पंक्ति है, रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन सवेरा आने ही वाला है, दुनिया का परिवर्तन होने ही वाला है। इतना सत्य है जितनी मृत्यु सत्य है। मैं परिवर्तन नहीं करूंगी तो क्या विश्व परिवर्तन नहीं होगा? उसकी तो प्रोसेस चल रही है, वो हो ही जाने वाला है। लेकिन उस नई दुनिया में मैं प्राप्ति कर सकती हूं, श्रेष्ठ पोजीशन प्राप्त कर सकती हूं। श्रेष्ठ पोजीशन के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तब वो ऊंची पोजीशन पर बैठता है। ईश्वर पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो टीचिंग्स सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे साइकिल की नॉलेज दी है, वो महसूस करा रहा है कि थोड़े समय में हम इन्हीं आंखों से एक तरफ दुनिया का विनाश और दूसरी तरफ स्वर्णिम युग की स्थापना हो रही है हम महसूस करेंगे, हम देखेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जबकि हमें स्वयं को परिवर्तन करना ही होगा, क्योंकि कालो राजस्य कारणम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब आवश्यकता है, हाई टाइम है कि हम अपने स्वयं के विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी कृति को इतना शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाएं। क्योंकि कहा, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये बुद्धि रूपी बर्तन बहुत स्वच्छ चाहिए। जितना स्वच्छ होगा उतना हम समाज की सेवा कर सकते हैं, स्वयं लायक बनकर के अनेकों को लायक बना सकते हैं। इसलिए राजनीति के साथ राजयोग का प्रयोग किया जाए। दोनों में राज शब्द कॉमन है, राज माना श्रेष्ठ है, राजनेता, राजपथ, राजगुरु, राजमाता, सब श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाले हैं। राजयोग है अपनी स्वयं की कर्मेंद्रियों को, चाहे मन बुद्धि संस्कार है, चाहे शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, उन पर रूल करने वाला, सेल्फ को कंट्रोल करने वाला। जब मैं सेल्फ रूलर और सेल्फ कंट्रोलर नहीं, मैं दूसरे पर रूल कैसे कर सकती हूं? रूलर के कुछ एथिक्स हैं, कुछ मॉरलिटी है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ प्रोटोकॉल है, उसको मुझे मेंटेन करना है। तो राजयोग एक ऐसी कला है जो हमको परफेक्शन की तरफ ले जाती है, और हम सब चाहते हैं परफेक्ट बने। तो जबकि फ्यूचर हमारे हाथ में है, हम जैसा बनाना चाहें हम बना सकते हैं। मनुष्य के पास इतनी योग्यताएं हैं, आप साधारण मनुष्यों से ऊपर हैं, क्योंकि राजनेता है। तो उस नेता की क्वालिफिकेशन को प्रैक्टिकल में हम जीवन में धारण करें, जो सदा सदा अपने उन एटिकेट्स में, अपनी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ ड्यूटीज दोनों को रियलाइज करे कि इस फील्ड में आने का मेरा लक्ष्य क्या था। वो लक्ष्य बना हुआ है या उस लक्ष्य से कहीं गुमराह तो नहीं हो गए हैं, गाड़ी ट्रैक से तो नहीं उतर गई है। अपने आप को हम चेक करें और चेंज करें। एक छोटी सी बच्चों की कहानी है, लेकिन सिखा बहुत कुछ देती है। एक बार कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, रास्ते में उसको कोयल मिली। कोयल कहती है, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे जाने दे। फिर पूछा, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो, एक बार कह दिया ना मेरे रास्ते में नहीं आओ, तुम अड़चन नहीं डालो, पर प्लीज कौवा भैया आप बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो, बड़ा फास्ट उड़ रहे हो। कौवा कहता है, इतना तू पीछे पड़ गई है तो सुन, मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्या हुआ? कहा, इस भारत में कोई मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता है, मैं जहां बैठता हूं पत्थर मार के उड़ा देते हैं। कोयल कहती है, कौवा भैया अगर आप बुरा नहीं माने एक बात कहूं, कहा तूने रो की लिया है तो सुना ना एक क्या दस बात सुना। क्या देख, मेरा रंग भी काला है, तेरा रंग भी काला है, हम दोनों काले हैं, परंतु तू जहां बैठता है ना वहां काव 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 करता है, तेरी ये काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए पत्थर मार करके उड़ा देते हैं। मैं जहां बैठती हूं मैं करती हूं कू कू, मुझे कोई नहीं उड़ाता। अभी तो सोचता है अमेरिका चला जाऊं, पर वहां जाके भी तो भैया काव काव ही करोगे, कू कू तो नहीं करोगे। स्थान परिवर्तन से प्राप्ति नहीं होती, स्व को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यहां पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को यही सिखाया है, खुद को देखो, खुद को जानो, खुदा को जानो, जो सर्व शक्तियों और गुणों का अपरम अपार स्रोत है। और उस बीते हुए भारत की तरफ नजर दौड़ा लो, फिर से ऐसा ही भारत मुझे बनाना है, कुछ भी हो जाए वही कार्य मुझे करना है, दूसरा नहीं। इसलिए कहा, स्वयं को स्वराज्य अधिकारी समझें, स्व की कर्मिंद्रियों के राजा बन जाएं, जिसमें न तृष्णा हो, न लोभ हो, न लालच हो, न मोह हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो। अपनी सारी विकारी दुष्वृत्तियों के रूलर बन जाएं, उनको निकाल करके ही मुझे दम लेना है। रावण के लिए कहा, उसने पांचों तत्वों को अपनी चारपाई के पांव से बांधा हुआ था, जल वायु आकाश अग्नि सबको, लेकिन उसके बोल, उसका आचरण और उसका व्यवहार क्या था। आज एक स्विच ऑन करें, सब हमारे कंट्रोल में है। गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, आवाज चाहिए, नहीं चाहिए, सारे विश्व को हम एक 10 इंच की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब 5 तत्वों के शरीर से भिन्न हम अपनी सेल्फ को रियलाइज करेंगे और ऑटोमेटिकली सारी स्पिरिचुअल पावर्स हमारे में आ जाएंगी। जो चाहिए सो मिलेगा। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग था, दरवाजे पर जाकर के खट खट करके खुल जा सिमसिम, अथाह भंडार, अथाह खजाने, सृष्टि का नियंता मेरा पिता है। हम रॉबर्ट्स नहीं हैं, मुझे जैसे चलाया जाए मैं चलती रहूं। हम उस गॉड ऑलमाइटी की सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है। उसका डायरेक्शन, उसका ऑर्डर सिर माथे है। तो ग्रंथ साहब में कहा, मानुष से देवता किए करत न लागे वार। और वो अपना कर्तव्य करता है। दूसरा उसमें है, इको माई सत्वयाई, सत चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के द्वारा आसुरी संप्रदाय का विनाश और नई सृष्टि की पुनर्स्थापना और विष्णु पालन करता, हम सब पालन करता है। लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका समाधान करते हैं, लेकिन कभी खुद का समाधान किया? खुद को समाधान स्वरूप बनाया कि मेरे में जोश क्यों है, क्रोध क्यों है, आवेश क्यों है, लोभ वृत्ति क्यों है, हिंसक वृत्ति क्यों है, क्यों नहीं मैं अपने में सतो गुणों को धारण करके सतो प्रधान, सतो गुणी आत्मा बनूं। आवश्यकता है उस आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने की, उस पवित्रता को मन और बुद्धि में ऐसा धारण करें कि एक एक कर्मिंद्री सुखदायी बन जाए। तो कहा, आंखों पर चश्मा पहने पवित्रता का, भाई भाई की दृष्टि का, क्योंकि आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम। तो इस वसुधा में जितने भी रहने वाले हैं सब मेरे ही भाई बहन हैं। दृष्टि का परिवर्तन हो। दूसरा, हाथों में दस्ताने ऐसे पहने जो ये हाथ सदा श्रेष्ठ कार्य करे, कोई गलत कार्य ना करे। कदम ऐसे उठे जो एक एक कदम में पद्मों की कमाई हो, सदा उमंग उत्साह रहे और स्वयं का एप्रन अपने श्रेष्ठ स्वमान का हो। सत्यता और ईमानदारी, संतोष और मधुरता, जीवन की धैर्यता को अपने आचरण में लेकर के आए। तो जैसा आचरण होगा वैसे हमारे विचार भी हैं, व्यवहार भी है, क्योंकि हम उस रामराज्य की कल्पना कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत की संकल्पना की है। तो एक एक को स्वयं पर मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए अपने अंदर के सारे वॉइसेस को क्विट कर देना है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, विकारों को छोड़ो आंदोलन चलाए, और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में हम अपना लें। इसलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, कर्म कर लेकिन फल की इच्छा ना कर। ईच एंड एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन। कर्म करेंगे, फल निश्चित है, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं चाहिए। कि मैंने किया तो मुझे एप्रिसिएशन हो। प्राप्तियां स्वतः ही हमारे चारों ओर घूमती हैं, प्राप्तियां करने वाला चाहिए। इसलिए हर एक खुद अपना आर्किटेक्चर बन करके अपने करैक्टर की बिल्डिंग को तैयार करे। मटेरियल हमारे पास में है, लेकिन आवश्यकता है उसको यूज करने की। हम उसे यूज करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं स्वर्णिम भारत, एक नया विश्व। सो मुझे ये समझने की जरूरत है, ईच वन इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट न्यू गोल्डन एरा। उसका हम पुनर्स्थापना के लिए सर्वशक्तिमान के साथी बनकर, सहयोगी बनकर के उन आचरणों को, उन गुणों को, उन मूल्यों को जीवन में धारण करें, जहां रिंचक मात्र भी स्वार्थ की वृत्ति ना हो, परमार्थ हो। ऐसा परमार्थ बन करके परोपकार करें। तो अपने जीवन को एक फार्मूला दें, सुख लो सुख दो, ना दुख दो ना दुख लो। अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझें और उसको महसूस करें, स्व का सशक्तिकरण करें, और वो स्व का सशक्तिकरण ही मुझे उस दैवी दुनिया की स्थापना की ओर ले जाएगा। दशहरा नजदीक आ रहा है, अपने अंदर के रावण को जला करके सच्चा दशहरा बनाए और अपने आत्मा की ज्योति को जगाकर सच्ची दीपावली मनाए। तो हम सहज उस स्वर्णिम दुनिया की स्थापना के इस महान कर्तव्य में परमात्मा पिता के सहयोगी बने, उन सद्गुणों को जीवन में धारण करें, उन मूल्यों को जीवन में धारण करें। अपने समक्ष श्री लक्ष्मी श्री नारायण उस चित्र को सामने ले आइए। स्वतः ही ना चाहते हुए भी नतमस्तक हो जाते हैं। मूर्तियों के आगे जाकर हम कहते, मैं मूर्ख खलकामी, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं कपटी, पाप हरो देवा। अगर ये शब्द मैं आपको बोलूं कि आप मूर्ख हैं, क्रोधी हैं, कपटी हैं, कामी हैं, कैसा लगेगा? पर उस जड़ मूर्ति के सामने जाकर के मैं कन्फेस करती हूं। कन्फेशन माना जी, रियलाइज किया मैंने कि ऐसे ही बोल दिया कि रियलाइज करके बोला। अब परमात्मा कहते हैं, जो बोला है ना उसको प्रैक्टिकल करें। अपने अंदर के उन विकारों को, अंदर के इस रावण को हम जला दें तो सच्चा सच्चा दशहरा मनाएं। जब तक अंदर रावण है, बाहर के रावण को जितना भी जलाएंगे वो और बड़ा होता है, हर वर्ष छोटा नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो मेरा जीवन संदेश दे, और घर घर में स्वर्ग बन जाए, घर घर मंदिर बन जाए, उन दैवी गुणों को, ईश्वरीय गुणों को हम स्वयं में धारण करके उस परमात्मा पिता के साथी सहयोगी उस नई दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए बने, मूल्यों की वैल्यू हम स्वयं करें, अपना समय, संकल्प और शक्तियां हम इस सेवा में लगाएं, क्योंकि हिम्मत देने वाला, शक्ति देने वाला स्वयं खुदा मेरे साथ है। तो परमात्मा के इस महान कर्तव्य कि भारत जो स्वर्ग था, देवभूमि था, हम उस पवित्रता की शक्ति को स्वयं में धारण करके स्वयं के जीवन में सुख, शांति, आनंद, दिव्यता को धारण करके हर आत्मा को उसके लिए प्रेरणा दें कि वो भी अपने जीवन को उदाहरण मूर्त बनाए। ओम शांति।
बहुत सुंदर शब्द हमने दीदी जी के द्वारा सुने, और जब शारदा दीदी सड़क की बातें कर रही थी तो कुछ क्षणों के लिए हम उस स्वर्णिम भारत में पहुंच गए थे। सत्य कहा आपने, स्वपरिवर्तन से ही सब होगा, और परिवर्तन का आधार है महसूसता। महसूसता की शक्ति से ही परिवर्तन होगा। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, बगीचा, बहुत सुंदर भारत। परमात्मा ने ये विश्व बहुत सुंदर, गार्डन ऑफ अल्लाह था, बगीचा था, हेवन था, स्वर्ग था। लेकिन जैसे बगीचे में जंगली पौधे आ जाते हैं और उनको नहीं हटाया जाए तो बगीचा जंगल बन जाता, उसी तरह से परमात्मा ने जब स्वर्ग की स्थापना करी तो कुछ वर्ष तो ये बगीचा मेंटेन रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे परिवर्तन अर्थात डिग्रेडेशन शुरू हुआ। ईश्वरीय मत में मन मत अर्थात श्री मत में जहां मन मत मिक्स हो गई, वहीं गिरावट शुरू हो गई। इस पर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है कि किस तरह से मनुष्य को अपनी मत बहुत प्यारी होती है। हर एक को क्या सबसे प्यारी होती है? अपनी राय, अपनी मत। और भगवान को भी नहीं छोड़ता है वो सोचता है भगवान से भी ज्यादा अच्छी मत मेरे पास है। एक बार एक भक्त मंदिर में गया, भगवान की मूर्ति के पास जाकर कहता है, हे भगवान, यहां मूर्ति बना खड़ा है, एक दिन मनुष्य का जीवन जी के देख। भगवान प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, अच्छा बोल, क्या चाहता है? बोला, एक दिन के लिए सीट चेंज कर ले, मैं तेरी सीट पे बैठता हूं, तू मेरी सीट पे आ जा, मैं यहां पर मूर्ति बनकर खड़ा होता हूं और तू एक दिन के लिए मेरा जीवन जी। भगवान ने कहा, सोच ले, मैं तो कर लूंगा, तुम इस सीट पे बैठ सकेगा? बोला, क्या मुश्किल है, बस मूर्ति बन के खड़े ही तो होना है, खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, देख, मेरी एक शर्त है, जो भी आए, कुछ भी हो, बस तेरे को मूर्ति बनकर खड़े रहना है, कुछ कहना, कुछ करना नहीं है। तो ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा मूर्ति बन के, जो आएगा उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। दोनों ने सीट एक्सचेंज कर ली, भक्त भगवान की सीट पर बैठ गया, भगवान उसके रूप में चला गया। जब वो भगत भगवान की सीट पर बैठा था तो एक बहुत ही रहीस आदमी आया और आकर भगवान की मूर्ति के आगे आकर झुका, बोला, हे भगवान, तुमने सदा मेरे सब काम पूरे करे हैं, अभी मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं, अपनी कृपा बनाए रखना। और सर झुका दिया। जब उसने सर झुकाया तो उसके जेब में एक पर्स था, वो पर्स भगवान की मूर्ति के आगे गिर गया और उसे पता नहीं चला, वो चला गया। थोड़े क्षण बाद एक गरीब मनुष्य आया, रोता रोता भगवान के आगे आया, हे भगवान, मेरे पास ना खाने को है ना कुछ है, मुझ पर कृपा कर, कुछ दया कर, रहम कर, अब बस मेरे पास ये एक रुपया बचा है, मैं ये तेरे पर चढ़ा रहा हूं, मुझ पर कृपा कर, दया कर। और सर झुका दिया। सर झुकाया, आंख खोली, देखा सामने नोटों का पर्स, बोला, भगवान तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, इतनी जल्दी मेरी मनोकामना पूरी कर दी। पर्स उठाकर चल दिया। तीसरा आया, उसने जहाज लेकर समुद्र में जाना था, तो उसने भगवान के आगे आकर सर झुकाया, हे भगवान, तू सदा मेरा साथी रहा है, सदा मेरी मदद करी है, अब फिर से मैं जहाज लेकर समुद्र में जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। जब वो भगवान के सामने ऐसे बोल रहा था तो इतने में वो जो पहला बिजनेसमैन था वो पुलिस लेकर आ गया, बोला, यही चोर है, इसने मेरा पर्स चुराया है। अब जब उसने ये सुना, उससे पहले भी जो भगत भगवान बन के खड़ा था, जब वो पर्स उठा रहा था गरीब आदमी, तो उसका मन हो रहा था कि मैं इसको रोकूं और कहूं कि नहीं, ये पर्स तेरा नहीं है। अब जब वो शिप वाला व्यक्ति आया और उसको पुलिस पकड़ने आ गई, और वो बिजनेसमैन ने कहा, बस यही मेरे बाद आया है और इसी ने ही मेरा पर्स चुराया है, अब वो जो भक्त भगवान बनकर खड़ा था उससे रहा नहीं गया, वो कहता, अब मैं रुक नहीं सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सब कुछ देखते हुए चुप रहना। तो उसने जोर से बोला कि मैं भगवान बोल रहा हूं और मैं कह रहा हूं चोर ये नहीं है, चोर वो गरीब आदमी है, इसलिए उसको पकड़ा जाए और इसको छोड़ दिया जाए। अब सबने सोचा भगवान कह रहा है तो इसका मतलब चोर वो गरीब ही है, उस गरीब को पकड़ा गया और उसके पास से पर्स भी मिल गया, उस गरीब जेल चला गया, बिजनेसमैन पर्स लेकर अपने घर चला गया, और जो शिप वाला था वो अपने घर चला गया और अपने काम में समुद्र में जाना था। शाम हो गई, भगवान वापस आए, भक्त से पूछा, सब ठीक रहा? बोला, बहुत बढ़िया रहा। बोला, क्या किया? बोला, मैंने आपका सब काम एकदम बढ़िया ठीक ठाक कर दिया, सब गड़बड़ होने वाली थी, मैंने सब ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? तो उन्होंने सारी कहानी भगवान को सुनाई। बोला, तुमने तो सारा ही ठीक करा कि चौपट कर दिया? बोला, तुमने सारा मेरा काम चौपट कर दिया। बोला, कैसे? मैंने तो सत्य किया ना। बोला, नहीं, वो अमीर आदमी जो था वो धोखेबाज था, बुरे काम करके लोगों को धोखा देके कमाता था, मैं उसका कुछ पैसा भले काम में लगाना चाहता था, इसलिए मैंने उस गरीब को उसका धन दिलाया, क्योंकि वैसे तो वो कभी किसी की मदद करता नहीं था, तो मैं उसका पुण्य बनाने के चक्कर में मैंने उसको वो धन देना चाहता था, और तूने वो धन उससे लेकर के पुलिस में डालकर सब गड़बड़ कर दी, मैं उस गरीब की मदद करना चाहता था, उसने उल्टा ही तुमने उसका दुख और बढ़ा दिया। और जो व्यक्ति जहाज लेकर सागर में जाने वाला था, सागर में तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, मैं उसको बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया कि ताकि वो जहाज लेकर सागर में ना जा सके और बच जाए, तो तुमने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं हम परमात्मा के बनाए हुए नियमों को, उसकी मत को ना समझकर अपनी मत को श्रेष्ठ समझा तो आज भारत कहां से कहां पहुंच गया, कहां भारत सोने की चिड़िया था और आज कहां पहुंच गया। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं निवेदन करूंगी आप सबसे कि यहां जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, श्रीमत दी जा रही है, उस पर विशेष ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं ग्रीटिंग्स देने के लिए हमारे ऑनर्ड गेस्ट मिस्टर महिंदर कुमार आहूजा जी को। आप 1977 से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, निगम पार्षद, आप दिल्ली से हैं, निगम पार्षद आनंद विहार, डिप्टी मेयर साउथ जोन, चेयरमैन है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, भाजपा जिला अध्यक्ष भी रह सके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री भी आप रह चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने ग्रीटिंग्स हम सबको दें।
ओम शांति। इस सम्मानित मंच पर विराजमान हमारी बहन अभी राजयोगा टीचर अहमदाबाद जो भी आपके बीच में की नोट रख रही थी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया, बहन शारदा जी, श्रीमान अर्जुन लाल जिंगर जी, श्री मनसुख भाई बुआ जी, बहन अभी हमारे बीच में जो संचालन भी कर रही है मंच का और बीच बीच में जो हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, बहन सपना जी, श्रीमान नाथन शाह जी, श्री नरेश यादव जी और हमारी आज के कार्यक्रम की इसकी अध्यक्षता कर रहे भाई जी मोहन सिंघल साहब। अभी जिस प्रकार ज्ञान का सागर यहां पर बखेरा जा रहा था, हमने कितना समेटा वो तो हम पर है, कितने मीठे शब्द, कितना तार्किक ज्ञान, कितना इंक्लूसिवनेस, कितनी सर्वग्राह्यता, शब्दों को सुने तो मानो उनके कहने में देरी लगती है, लगता है अगला वाक्य क्या बोला जाएगा, हमारे कान एकदम एक्साइटमेंट आती है कि अगला शब्द क्या सुनने वाले हैं और क्या हमारे अंदर उतरने वाला है। एक एक भाषण में इतना ज्ञान, ये यहां आकर मेरा जो पहला अनुभव है कि इतनी स्पष्टता, इतना तार्किक, ऐसा मैंने पहली बार यहां पर माउंट आबू में आकर अनुभव किया है। क्षेत्रीय स्थानों पर तो मैं बहुत गया हूं पर मुझे यहां आकर वास्तव में विभिन्न सा अनुभव आ रहा है, बिल्कुल अलग अनुभव आ रहा है। मैं केवल आनंदित होना बहुत छोटा शब्द है, मैं अभिभूत हूं यहां आने के बाद, मुझे जैसा लग रहा था उससे कहीं ज्यादा मैं यहां पा रहा हूं। राजनीतिक लोगों की दिक्कत क्या होती है, उनको अगर विषय पे बोलने के लिए कहा जाए तो वो 2 मिनट 4 मिनट भी विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, लेकिन विषय के बिना उनको माइक दे दिया जाए तो वो माइक छोड़ेंगे नहीं, घंटों भाषण चलता रहेगा, क्योंकि उसमें विषय के साथ न्याय नहीं करना है, कुछ भी बोलना है तो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पर कह दीजिए ये विषय है तो घिग्गी बन जाती है। लेकिन अभी हमारी सिस्टर्स ने विषय के ऊपर ही फोकस रखा और इतना लंबा व्याख्यान, उसके बाद अगले बोलने वाले को लगता है कि बचा क्या है जो मुझे बोलना है, लेकिन कहा गया है तो कुछ कहना भी है। हम इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हैं जो राजनेताओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा तो राजनेताओं की क्वालिटी, उनकी डिलीवरी, उनका काम करने का तरीका, इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे प्राणी मात्र को इसका लाभ मिलेगा। और अभी इस सत्र का जो विषय है वो विषय है कि राजनेताओं का इस देश को स्वर्णिम भारत बनाने में क्या योगदान हो सकता है, ये विषय है। तो विषय हुआ अभी का, तत्कालिक विषय इस सत्र का, स्वर्णिम भारत का निर्माण, ये उद्देश्य हुआ। स्वर्णिम भारत का निर्माण, स्वर्णिम भारत, जो भारत सोने की चिड़िया, भारत विश्व गुरु, भारत विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी देश, सबसे संपन्न देश, ये हमारा इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है, हमारा पुराना पूरा ज्ञान, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी ये कहती है कि हम कभी पूरे विश्व के ऊपर हम छाए हुए थे, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। और आगे का एजेंडा यह है कि स्वर्णिम भारत फिर से कैसे बने, ये हमारा टारगेट है, आने वाले समय का लक्ष्य है। बीते हुए इतिहास को दोहराना आगे फिर से उसी लक्ष्य को जो हमसे छिन गया है वापिस हासिल करना, तो वर्तमान में इसके लिए क्या करना और वर्तमान में क्या करना सबके लिए नहीं, राजनेताओं को इसमें क्या करना, ये विषय हुआ। राजनेताओं की विशेषता क्या है कि अगर एक बड़ी से बड़ी कोई गाड़ी ले लीजिए, हम एक कार लेते हैं करोड़ों रुपए की लगी हो, वो BMW हो, मर्सिडीज हो, वो उससे बड़ा कोई ब्रांड हो, मुझसे बड़े ब्रांड के मुझे नाम याद नहीं है, कोई बड़े से बड़ी करोड़ों रुपए की एक गाड़ी हो और वो किसी भी एक राजनेता को गिफ्ट कर दी जाए कि ये लीजिए इसको चलाइए। लेकिन जैसे राजनेता उसको चलाने लगे या कोई भी व्यक्ति उसको चलाने लगे, उसको कान में बता दीजिए कि ये गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, केवल इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती है, तो आप बताइए इस गाड़ी को आप चलाना चाहेंगे, आप उसमें बैठना चाहेंगे, जिसमें सारी सुविधाएं हों लेकिन समय आने पर, आवश्यकता होने पर उसमें ब्रेक नहीं लगती। तो साथियों, हम राजनेता समय समय पर जब हमारा मार्गदर्शन नहीं होता, जब जब हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों की कमी पड़ती है, जब जब हम अध्ययन नहीं करते, जब जब हम अपने नैतिक मूल्यों से हट जाते हैं, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, तो हम बिना ब्रेक की वो वाली गाड़ी हो जाते हैं जिनके पीछे फॉलोअर्स तो लाखों हैं लेकिन पता नहीं कब उनके हाथ से क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण तो बचता ही नहीं। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी पूंजी है और ये हासिल हो सकती है केवल और केवल जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं। अध्यात्म क्या है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। मैं ये समझता हूं कि हम पूरे जीवन में जितना भी अनुभव लेते हैं, जितना भी अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हम जितना आत्मसात कर लेते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को जितना अंदर कर लेते हैं, वो अध्यात्म है। और उस अध्यात्म का हम समाज के हित में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम एक अच्छे पॉजिटिव टिके हुए राजनेता कहलाते हैं, नहीं तो राजनेता तो कुछ ही वोटों से जीतने पर भी बनी जाया करते हैं। साथियों, एक राजनेता जो पॉजिटिव विचार को लेकर आया है, वो मान लीजिए कुछ लाख की आबादी का ही नेता है, पर वो जब उदाहरण बनता है तो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैलती है। जब वो उदाहरण बनता है तो सब उसके जैसा होने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिविटी एक जगह से शुरू होती है और एक जगह पर अगर एक फूल महकता है तो खुशबू और रोशनी बड़ी दूर तक जाया करती है, सुगंधी दूर तक फैलती है। इस नाते ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो उपस्थित जिन कार्यकर्ताओं को यहाँ आने का, मेरे जैसे जिन कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है, वो अगर अपनी खुशबू यहाँ से ले जाकर फैलाते हैं तो इसकी सुगंधी, इसकी खुशबू दूर तक जाती है। उस नाते हमारा यहाँ पर आना सफल होता है और जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी सूझबूझ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका ये आयोजन करने का उद्देश्य सफल होता है। साथियों, अब आती है बात स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, अगर हम ये कहें कि केवल संपदा का नाम स्वर्णिम भारत है तो शायद ये बहुत छोटी सी परिभाषा होगी स्वर्णिम भारत की। स्वर्णिम भारत वो है जो आने वाले समय में विश्व में जितना तनाव है, विश्व बंधुत्व हो, एक दूसरे को समझने आदान प्रदान हो, एक दूसरे की दूरियां मिटें, विश्व में जितना तनाव है वो समाप्त हो, और इसमें आर्थिक और बाकी मुद्दे तो आते ही हैं, लेकिन इस ओर बढ़ना हो तो सबसे ज्यादा क्या होना होगा कि वास्तव में जिनके ऊपर, मुख्यतः राजनेताओं के ऊपर इसके ओर पहल करने की जिम्मेदारी है, तो उनके विचारों में बहुत दूरदृष्टि हो, बहुत व्यापकता हो, बहुत ग्राह्यता हो, बहुत इंक्लूसिवनेस, ग्राह्यता से हो गया, और इसके अतिरिक्त पारदर्शी काम करने का तरीका हो, लोगों को और उस राजनेता पर विश्वास हो, और हम ऐसे ऐसे उदाहरण दें कि विश्व बंधुत्व के लिए हमारे देश को अपना बड़ा भाई माना जाए, विश्व बंधुत्व हो लेकिन भारत उसमें बड़ा भाई हो, यह है स्वर्णिम भारत। हम अगर विदेश नीति को तय करने के लिए बैठे, विश्व व्यापार को अगर तय करने के लिए बैठे, तो उसमें जो नीतियां बने वो प्राचीन नीतियां, हम कभी एक गुरु प्रथा थी, एक पेड़ के नीचे गुरुजी बैठते थे, उनकी एक लंबी चोटी होती थी, पेड़ के नीचे शिष्य बैठता था, गोल मुंडेर पर गुरुजी बैठते थे, ऐसा वाला दृश्य मन में लाने की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि चीजों को अगर दोबारा से वापिस आना है तो उनको नवीन होकर आना है, समय अनुकूल होकर आना है। नीतियों को अगर बनना है तो केवल ये नहीं कि कुछ नीतियां बन गई और वो उनको पालन हो, वो नीतियां तार्किक तौर पर स्वदेशानुकूल होनी चाहिए। हमने जो ज्ञान अर्जित किया, ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेने से, और ज्यादा ज्ञान अर्जित किया हुआ हो उसको ऑर्गेनाइज ना किया जाए, उथल पुथल हो जाने से कंफ्यूजन और भ्रम की स्थितियां बनती हैं। जैसे कभी कभी आपको पता हो, जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है, ज्यादा पढ़ने से भी अगले दिन बच्चा एग्जाम में ठीक इसलिए नहीं लिख पाता कि उसके पास ज्यादा ज्ञान है, वो एक क्वेश्चन का आंसर चार तरह से लिख सकता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे लिखना क्या है। लेकिन ऑर्गेनाइज माइंड अपनी जानकारियों को ठीक से यूटिलाइज कर पाता है। इसी तरह भारत को हम जब यहां पर बैठे, अपने अध्यात्म को और बल देने के लिए यहां पर बैठे हैं, और हम पॉजिटिव नीतियां, देश के लिए नीतियां, देश अनुकूल, स्वदेश अनुकूल, समय अनुकूल, और जहां पर बैठे हैं वहां की परिस्थिति अनुकूल अगर नीतियां देने की स्थिति में है, मुझे लगता है कि यहां पे आने के बाद तो ये विश्वास बढ़ता है। जब हमारे पास इतना ज्ञान, आज मैंने जितने भी 3-4 सत्र देखे हैं, मैंने ये पाया है कि ज्ञान को अगर तार्किक रूप से स्वीकार किया जाता है, पूरे तर्कों में वो प्राश उतरता हो तब उसको स्वीकार किया जाता है, तो हमें विश्वास इतना बढ़ता है कि हमें लगता है कि हमें इस दुनिया का अंतिम सत्य पता है। अंतिम सत्य का मतलब कि हम अल्टीमेट जो एक मूल तत्व है वहां तक पहुंचने की अगर क्षमता हमें आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर हमारे सामने कुछ ठहरता नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अंदर से शक्तिशाली हूं, और इतना शक्तिशाली हूं कि मैं खुद को आत्मनियंत्रित भी कर सकता हूं, और मैं सारा भला बुरा सोच सकता हूं, और उसमें से सिर्फ भला और भला ही बांटना चाहता हूं, प्राणी मात्र का, विश्व बंधुत्व का अच्छा कुछ कर जाना चाहता हूं, तो वो सब हमारे अगर योगदान आगे बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि भाषण से सुधार नहीं हुआ करता। भाषण देने के लिए तो कोई भी व्यक्ति साहित्य के 4 पन्ने पढ़े, भाषण रट ले और वो दे, इससे सुधार नहीं होता। राजनेताओं को पहले भला और बुरा क्या है, देश के लिए अच्छा और बुरा क्या है, इसको समझ लेना होगा। उसको करने के लिए हमारा मार्ग क्या हो उसको समझ लेना होगा, फिर उसको करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास ऐसे करने पड़ेंगे जिसका अवश्यंभावी फल भी आए, वो फल में भी उसकी परिणति हो, इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। और ये सब करने का अगर हम यहां से संकल्प लेके जाते हैं, मुझे लगता है कि इतने अच्छे स्थान पर, माउंट आबू पर राजनेताओं का मिलना बहुत अद्भुत संयोग है। ये संकल्प हमें करना ही चाहिए कि हमारा आने वाले समय का, पिछला जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही करते होंगे, लेकिन आने वाला समय देश के लिए, प्राणी मात्र के लिए, विश्व के लिए एक एक कदम आगे बढ़े तो पॉजिटिव की तरफ बढ़े, लोगों को साथ लेने की तरफ बढ़े, लोगों के विकास के लिए, भले के लिए बढ़े, लोगों के अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, इसके लिए बढ़े, आने वाली पीढ़ियां कुछ हम उनको देकर जा सकें इसके लिए बढ़े। ऐसे संकल्प के साथ मैं आप में से अपना स्थान लेता हूं, विदा लेता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र कुमार आहूजा जी का, बहुत सुंदर आपने अपने शब्द हमारे सामने रखे, और एक बहुत ही सुंदर हमारे सामने एक बात कह के गई जो हमारे संस्था के फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा करते थे, और वो एक उनके जीवन का हमेशा एक लक्ष्य रहता था, और सबको वो कहते थे एक लीडरशिप क्वालिटी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, ये उनके अंदर हमेशा रहता था। और यही बात आहूजा जी हमें बता के गए कि हम भाषणों से नहीं लेकिन कर्म से परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आहूजा जी का। अब मैं ग्रीटिंग्स देने के लिए आमंत्रित करने जा रही हूं मिस्टर अर्जुन लाल जिंगर जी को, जो भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, आपने एमए बीएड किया है और टीचर भी रहे हैं, टीचर रूप करके भी सेवा करी है। तो आमंत्रित करती हूं अर्जुन लाल जिंगर जी को कि आएं और अपने ग्रीटिंग्स हम सबको दें।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान श्रेष्ठ महानुभावों में आदरणीय मोहनलाल जी सिंघल साहब, राजयोगिनी दीदी शारदा दीदी जी, महेंद्र कुमार जी आहूजा, मनसुख भाई जी, नाथन शाह जी, नरेश जी यादव, सपना दीदी जी, यहां आने का मेरा दूसरा अवसर है। मैं पहली बार आज के 2 साल पहले यहां आया था। इस ज्ञान सरोवर में जो अनुभव मैंने प्राप्त किए और उससे लगता है कि मैं बार बार यहां आऊं और मेरे शरीर को, मेरे इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूं। जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, अच्छे देश का, सुंदर भारत का, सुंदर विश्व का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए इस ज्ञान गंगा में हम सब डुबकी लगाएं और यहां का आशीर्वाद हम लें और ये आशीर्वाद यहां से लेकर के जन जन तक पहुंचाएं। पूरे विश्व में यहां की कई शाखाएं हैं, हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आशा दीदी जी हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्हीं के प्रयास से मैं यहां बार बार आता हूं। हमारे रामेश्वर भाई जी हैं, वो हमको यहां लाते रहते हैं और मैं यह चाहता हूं कि हम जो भी यहां से प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा हमारा ज्ञान आगे बढ़े। राजनेताओं के लिए ये आयोजन हो रहा है, 3 दिन तक चलने वाला है। राजनेताओं में आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल किस प्रकार से बढ़े, जब तक राजनेता आध्यात्मिक की दृष्टि से अपने मनोबल को शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं बनाएगा, तब तक इस देश का भला पूरी तरह से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में, देश के निर्माण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। आज का विषय जो रखा है वो विषय है स्वर्णिम भारत में राजनेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। अब राजनेताओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, जानने के बाद भी उसको पहचानते नहीं और पहचानते भी हैं तो करते नहीं। ये कई कारण हमारे समस्याएं हमारे साथ लगी हुई है। लेकिन जो राजनेता आगे बढ़ता है वो राजनेता आता कहां से, उसके लिए और कोई स्थान नहीं है, समाज से आता है। और इस लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन राजा पैदा करती है और उसी हिसाब से वो जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्ति वहां पर चुन करके जाएगा। और समाज के अंदर क्या कुरीतियां हैं या अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनमें से चुनिंदा व्यक्ति, यदि अच्छा समाज है तो अच्छा व्यक्ति चला जाएगा और समाज के अंदर पहले ही बुराइयां हैं तो उसी में से चुन करके जाना है तो आगे क्या दिशा और दशा देगा इस देश को, वो हम सबको देखने की बात है। आज की तारीख में ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा व्यक्ति निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और ईश्वर कहां है, ईश्वर को हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, ईश्वर हमारे भीतर है, उस भीतर के इंसान को कौन पहचानेगा और पहचानने के लिए हमको कौन आगे करेगा। यदि गुरु अच्छा होगा, हमको शिक्षा देने वाला अच्छा होगा तो हम अच्छे बन जाएंगे। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को तैयार किया, जितने भी दुष्ट लोग थे रावण जैसे योद्धाओं को मारने का काम किया, उनको शिक्षा दी विश्वामित्र जी ने। संदीपनी गुरु थे, उन्होंने कृष्ण को शिक्षा दी और आज उन्होंने एक योगी के रूप में संपूर्ण महाभारत का इतिहास लिखा। महाभारत की लड़ाई में उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से बिना मोह त्याग करके अर्जुन को कहा कि युद्ध कर, दुष्टों का नाश तेरे हाथों से होना है, तो वो भी एक राजनीति थी। चाणक्य को हमने देखा है, हमने कई इस प्रकार से गुरु देखे हैं। आज ईश्वरी विश्वविद्यालय भी हमारा एक गुरु है और यहां की शिक्षा लेकर के हम जाएं, हमारे मन के अंदर जो भी ताकत और शक्ति है उसके ऊपर, जैसे हमारे अंगारे के ऊपर किसी प्रकार की कोई राख आ जाती है और उसकी उत्तेजना कम पड़ जाती है, लेकिन उस राख को यदि हटा दी जाए तो हम अपने आप में शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएंगे। यही काम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। मैं सोचता हूं हम आगे बढ़कर के हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश स्वर्णिम हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, इस देश में इतनी ताकत हो कि विश्व गुरु बन सके। तो ये देश तो पहले सोने की चिड़िया था, ये इतिहास नहीं है। देश तो आज भी सोने की चिड़िया है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है और काम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ये देश पहले सोने की चिड़िया था, आज सोने की चिड़िया है। हमारे देश में बहुत धन है, वन संपदा है, खनिज संपदा है, अच्छे विचार के, अच्छे आचरण के, निष्ठावान, श्रेष्ठ उच्च विचारधारा के लोग और व्यक्ति भी हमारे यहाँ पर विद्यमान हैं, लेकिन उनको आगे आने का अवसर जब तक नहीं मिलता है तब तक वो इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। आज इस देश की भूमिका कौन निभा रहा है? हमारे देश को 67 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस गति से हम आगे नहीं बढ़े। जापान एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क होने के बाद भी उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद भी कुछ सालों में ही उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली। ये प्रोग्रेस का अर्थ था वहां के जो राजनेता थे, वहां के जो व्यक्ति थे, वहां के जो वैज्ञानिक थे, उनमें इच्छा शक्ति थी, दृढ़ आत्मविश्वास था कि हमको आगे बढ़ना है। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति, राजनेताओं की मनोशक्ति और इच्छा शक्ति को हम देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा मन भले ही बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमारी भावनाएं जो है देश के प्रति वो ठीक नहीं है। जब तक देश के प्रति भावनाएं व्यक्ति की ठीक नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज हम देखें, जिधर देखें उधर देखें, राजनेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इस कथनी और करनी के अंतर को मिटाना होगा और जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगी और जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा बनेगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे अंतर मन को ठीक करके अच्छे राजनेताओं को आगे बढ़ाएं और देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो विदेश नीति बने, चाहे खनिज नीति बने, चाहे आर्थिक नीति बने, ऐसी नीति बने, हर व्यक्ति उसके अंदर अपना भागीदार बन सके और इस देश को आगे लाने में अपना योगदान दे सके। और राजा ऐसा होना चाहिए, राजनेता ऐसा होना चाहिए कि वो नेता, उस नेता का आचरण, उसका व्यवहार से जनता प्रभावित रहे और जनता के मानस पटल पर उस व्यक्ति का, व्यक्ति की छवि उस लोगों के मन में जानी चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा राजनेता, ये हमारा दिन रात सेवा करता है और देश को ऊंचे तक ले जाने का काम करता है। मैं पुनः व्यक्ति निर्माण की संस्था का, आध्यात्मिक दर्शन करने वाली संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा जो चलाया जा रहा मिशन, ये एक मिशन नहीं है, आप एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और ईश्वरीय कार्य वही कर सकता है जहां ईश्वर का निवास होता है। और ये धरती ईश्वरीय धरती है और इस धरती पर हम आकर के बड़े धन्य हो गए हैं और यहां पर बार बार आने का मन करता है। आपसे भी यही आग्रह करता हूं और मेरा मन सुधरे, मेरा तन सुधरे और ये जीवन जो मुझे मिला है, ये ईश्वर ने मुझे मनुष्य बना दिया, इससे बड़ी कृपा ईश्वर ने मेरे पर जो की किसी पर नहीं हो सकती। यदि मुझे और कोई प्राणी बना देता तो मेरी क्या हैसियत होती। जो मेरे मन में आत्मा है, आत्मा हम सब में है और वो समान है, लेकिन हमारे को भगवान ने इंसान बना दिया और इंसान बनने के बाद हम अच्छे इंसान बन जाएं। और जब हम यहां धरती पर आए थे तो मैं स्वयं तो रोया था, लेकिन मैं जब यहां से जाऊं तो जनता रोए, दुनिया रोए, ऐसी करनी हमको करके जानी चाहिए। पुणे में ईश्वर विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें यहां बुला करके जो मान सम्मान दिया इसके लिए तो आभार। और हम बार बार आपके यहां पर आते रहे और इस ईश्वर विश्वविद्यालय के कार्य को हम हमारे मन, वचन और क्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास करे, यही संकल्प लेता हुआ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन लाल जिंगर जी का, बहुत सुंदर आपने अपने भाव हमारे सामने प्रकट करे और आपने जो अपने संकल्प हमारे सामने रखे स्वर्णिम भारत के, तो कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। तो जब इतने सारे राजनेताओं के अंदर स्वर्णिम भारत बनाने की चाह पैदा हो जाएगी तो मैं समझती हूं राह निकल ही आएगी और ये भारत स्वर्णिम भारत बन ही जाएगा। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। तो जब हमारे राजनेताओं के अंदर स्वर्णिम भारत की चाह पैदा हो जाएगी, हमारे अंदर वो स्वर्णिम ख्यालात, वो स्वर्णिम वृत्ति, वो स्वर्णिम दृष्टि पैदा हो जाएगी, जब हमारे अंदर वो स्वर्णिम पैदा हो जाएगा तो बाहर का स्वर्ग अपने आप ही बन जाएगा। मैं पुनः अर्जुन लाल जिंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने संस्था को भी बहुत अच्छा अपने उद्गार दिए और आपने चाहना रखी कि आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मनसुख भाई भुआ जी को, जो एक्स एमएलए अमरेली गुजरात से हैं। हम स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं तो स्वर्णिम भारत माना जहां हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस हो, तन भी तंदुरुस्त और मन भी तंदुरुस्त। तो आप सबका तन तंदुरुस्त है, तन तंदुरुस्त है, यहां तंदुरुस्त है, सब तंदुरुस्त, मन मन भी तंदुरुस्त है सबका, हाँ? नहीं है कि है मन तंदुरुस्त है, मन से सब तंदुरुस्त, बिल्कुल फ्रेश, यहां तो फ्रेश रहेंगे। अब यही फ्रेशनेस हम चाहेंगे कि आप जहां भी अपने क्षेत्र में आए हैं वहां पर जरूर लेके जाएं। तो अब हम कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे, वो आध्यात्मिक, वो अंतर मन की यात्रा करेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम पुनः स्व से जुड़ेंगे, अपने सत्य स्वरूप से जुड़ेंगे। तो आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप अलर्ट और कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, हाथ में जो भी सामान है वो साइड में रखेंगे और हम एक रूहानी यात्रा करेंगे, मन की यात्रा। मन में जो भी विचार हैं उन विचारों को धीरे धीरे एकाग्र करेंगे अपने भीतर, स्वयं से कनेक्ट होंगे, अपने सत्य स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे। कुछ क्षणों के लिए देह पदार्थ सब कुछ भूल मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य शक्ति, एक
एक ऊर्जा। दिव्य सितारा हूं, प्रकृति के बीच निवास करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा रथी हूं। मैं दिव्य हूं, अलौकिक हूं। मैं एक शांत स्वरूप, शीतल आत्मा हूं। सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्व प्रकार के चिंताओं से मुक्त, मैं अशरीरी आत्मा हूं। दिव्य सितारा हूं, मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं। यही मेरा सत्य स्वरूप है, मेरा सधर्म शांति है, शांति मेरे अपने अंदर है। कुछ क्षणों के लिए अशरीरी विदेही शांति की स्थिति में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सच्ची शांति का अनुभव कीजिए। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं शांत स्वरूप आत्मा, अब धीरे धीरे मन और बुद्धि की उड़ान आत्मा एकदम लाइट है। मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा एक दिव्य उड़ान लेती, दिव्य यात्रा, एक रूहानी यात्रा। अनुभव कीजिए कि मैं एक दिव्य सितारा उड़ता हुआ इस देह की दुनिया से परे एकदम हल्का डबल लाइट उड़ता हुआ चांद सितारों से भी परे अपने घर परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम पहुंच गए। ये मेरा अपना घर स्वीट होम, जहां से मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर गई थी। कुछ क्षण इस दिव्य पवित्र और शांत वातावरण में मैं आत्मा अनुभव करती, स्वयं को चार्ज करती, कितना आराम है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं आत्मा अपने घर में सुकून से हूं। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा की दिव्य अलौकिक किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही। और मैं आत्मा शांति, पवित्रता, शक्ति, खुशी, आनंद, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही है। परमात्मा की किरणें में इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिवान की किरणें मेरी कमी कमजोरियों को, मेरे कमजोर संस्कारों को भस्म करती जा रही। और मैं आत्मा रिजुवनेट होती जा रही। रिचार्ज होती जा रही, शक्तिशाली बनती चली जा रही। कुछ क्षण इस अलौकिक मिलन का अनुभव कीजिए। मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूं, अपने घर परम धाम। धीरे धीरे मन और बुद्धि को वापस साकार वतन में इस देह की दुनिया में वापस लेकर आएंगे। परंतु अब मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा रथी हूं और ये मेरा शरीर रथ है। मैं जीव आत्मा हूं, जीव अलग, आत्मा अलग है। इस शरीर द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस रूहानी यात्रा के बाद अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं ग्रीटिंग्स की श्रृंखला में हमारे अगले ऑनर्ड गेस्ट मिस्टर नथन शाह जी को, जो एमएलए हैं चिंदवाड़ा एमपी से आप पधारे हैं। आप बाल्यकाल से ही सेवाएं करते चले आ रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने ग्रीटिंग्स हमारे सामने रखेंगे। आप बीजेपी से हैं।
ओम शांति शांति। ब्रह्म कुमारी का आध्यात्मिक सशक्ति कार्यक्रम का आज यह दूसरा दिन है और आज राजनीति के ऊपर से यह कार्यक्रम रखा गया है। आज के कार्यक्रम में हमारे ब्रह्म कुमारी से बहन साधना जी, ब्रह्म कुमारी बहन सपना जी, हमारे दिल्ली से आए श्रीमान महेंद्र कुमार जी, हमारे एमएलए साहब राजस्थान से आए अर्जुन लाल जी, और हमारे बीके मोहनलाल सिंगल जी, और हमारे इस पूरे देश से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि भाइयों बहनों, सम्मानित मंच। मैं एक छोटे से गांव पनारा से आया हुआ हूं। मैं बचपन से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ही मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिली, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी ने निवेदन मुझसे किया और मुझे टिकट मिली। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि टिकट मिली, लेकिन मुझे टिकट मिल गई भारतीय जनता पार्टी से। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहा हूं और भगवान की दया से 20,121 वोटों से जीता भी। अभी राजनीति में नया नया हूं, लेकिन आज भी सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक काम समाज के बीच में मेरा नियमित काम करने का चलता रहता है। कोई गरीब आए, दुखी आए, सभी के लिए मैं कहीं ना कहीं सहभागी होता हूं। और हमारे महापुरुषों ने कहा जब दुनिया में भौतिक चिंतन का सूर्य अस्त हो जाता है तब भारत में दार्शनिक सूर्य का उदय होता है। भारत के ऋषि मुनि दुनिया को भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का आश्वासन नहीं देते, बल्कि ये विश्वास दिलाते हैं जब दुनिया के लोग अज्ञान और अंधकार में भटक रहे होते हैं तब हमारे देश के ऋषि मुनि भटकने वालों को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। ऐसा हमारा एक राष्ट्र मंदिर के रूप में हमारी बहन ब्रह्म कुमारी जी का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उनके लिए मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत बधाई का पात्र हूं। क्योंकि एक छोटे से गांव में रहने वाला जब विधायक बना तो हमारी एक बहन सरिता जी मुझे कई बार निवेदन करी कि भाई साहब आपको कार्यक्रम में आना है, मैं भी व्यस्त रहता था और हमारे राकेश नागवंशी जी वर्तमान में यहां पर आए हुए, उन्होंने भी बहुत निवेदन किया कार्यक्रम में। तो लगातार चार पांच बार मैं जब कार्यक्रम में गया तो मुझे अच्छा लगा कि समाज में भी बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही है। और उन्होंने जब निवेदन किया कि आपको माउंट आबू चलना है तो मैंने उनसे निवेदन किया कोई पहाड़ है क्या, कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थल है क्या। उन्होंने कहा भाई साहब पहाड़ी पर्वत भी है और एक धार्मिक स्थल भी है जहां मन को शांति मिलती है। और वास्तव में जब मैं यहां आया तो मुझे मन में वास्तव में बहुत शांति मिली और मुझे बहुत आनंद आया कि हमारी जो बहनें हैं देखिए कितना काम करती है, ब्रह्म मुहूर्त से उठकर योग की शिक्षा लगाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे समाज के बीच में कैसा इस राष्ट्र को कैसा परिवर्तन कर सकते हैं, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर कैसे ले जा सकते हैं। बीच में भी दीदी विषय दे रहे थे कि ये जो राष्ट्र था, ये भारत जो था विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र था, ये भारत सोने की चिड़िया थी। हमने भी इतिहास में पढ़ा कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया थी तो हमारा ये देश कैसे गुलाम हो गया। तो ये वास्तव में हम लोग भी चिंता करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस राष्ट्र को राजनीति की आवश्यकता तो है, राजनीति के माध्यम से और समाज में जितनी धार्मिक संस्थाएं की जो संस्थाएं जो काम कर रही है इन सबके माध्यम से यदि इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए और इस राष्ट्र को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो निश्चित है कि हम जनप्रतिनिधियों को और हमारे देश में जितने प्रकार की धार्मिक संस्थाएं चल रही है, आप और हम और हमारे साथ जो जनता है, ये सब मिलकर यदि हम कंधा से कंधा मिलाकर हम यदि इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे तो निश्चित है कि ये राष्ट्र विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र होगा और हमारी खोई हुई जो अस्मिता हमने जो खोई हुई है, कहते थे कि ये देश सोने की चिड़िया है, यहाँ दूध की नदियां बहती थी, इस साधु संतों के देश में, इस महापुरुषों के देश में, इस बुद्धिजीवियों के देश में, ऐसा कैसा समय आया, ऐसा कैसा कौन सा काल आया कि हमारा जो राष्ट्र है गुलाम हुआ। उस गुलामी को अभी वर्तमान में 67 वर्ष हुए हैं, लेकिन इन 67 वर्ष में भी समाज में जो एक भौतिक पाश्चात्य सभ्यता जो घुसी हुई पहनावा के माध्यम से, खान पान के माध्यम से और भी कई प्रकार के माध्यम से जो पाश्चात्य सभ्यता घुसी है, इस पाश्चात्य सभ्यता को मिटाने के लिए और हमारे राष्ट्र की खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए तो निश्चित है कि हम सबको कंधा से कंधा मिलाकर यदि हम समाज में एक नया परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित है कि राष्ट्र विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। ज्यादा न कहते हुए ओम शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद नथन शाह जी का, आपने सार में ही और अपने उद्गार हमारे सामने रखे, बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ ग्रीटिंग्स में हमारे मिस्टर नरेश यादव जी को। आप एक्स एमपी है कटिहार बिहार से, आपने 1970 से आप राजनीति में आए और समाज सेवाएं करना शुरू किया। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप आए और अपने ग्रीटिंग्स दें। आप एमपी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से कटिहार बिहार से।
ओम शांति। परम श्रद्धेय बीके मोहन सिंगल साहब, महान विदुषी दीदी शारदा जी, महेंद्र कुमार जी, अर्जुन लाल जिंगर साहब, एम एल माननीय विधायक, बहन सपना जी, आप मंच पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय, मेरे साथ आए हुए शंकर साहू जी, बिहार से बड़ी संख्या में उपस्थित माननीय सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी दलों के सम्मानित नेतागण, ये मेरा सौभाग्य है कि बहन धर्मशीला जी ने मुझे यहां आने के लिए आमंत्रित किया और मैं ऐसे पवित्र जगह में जहां खुद में जो मन में एक कल्पना रहती है कि ऐसा सुंदर भारत बनेगा, ऐसी सुंदर दुनिया बनेगी, उसे साक्षात दिग्दर्शन करने का मौका मिला है। ऐसे बहन शारदा जी ने जो बताई है हम लोगों पहले संबोधन में, उसके बाद कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम चलें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं कोशिश किया राजनीति में आने का पढ़ाई समाप्त के बाद। परम श्रद्धेय एसएम जोशी साहब, मधुलिमय साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेरे यहां आए थे कुरसेला और मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं। एसएम जोशी साहब ने तुरंत ही कहा, अगर तुम राजनीति में आना चाहते हो तो पहले सेवा कार्य करो। और उन्होंने डिपूट किया बाबा आमटे के आश्रम में, जाओ कुष्ठ रोगी की सेवा करो। मैं तुरंत तैयार हो गया और तैयार होकर के 1970 में बाबा आमटे के आश्रम में कुष्ठ रोगी की सेवा करने पहुंच गया। 6 माह तक वहां सेवा की और बाबा ने घोर बस्तर के जंगल में अपने साथ घुमा घुमा करके दिग्दर्शन कराया, भारत की गरीबी से रूबरू कराया, देखो इस देश में कैसे गरीब लोग रहते हैं। फिर अपने घर आकर के हमने प्रारंभ किया सेवा कार्य करना, राजनीति कार्य करना और राजनीति करते करते पूर्व सांसद बन के यहां तक पहुंचा। दोस्तों भाइयों बहनों, स्वतः में राजनीति और आध्यात्म दोनों युगों युगों से जुड़ा हुआ है। महान विद्वान समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि राजनीति अल्पकालीन धर्म है, धर्म दीर्घकालीन राजनीति। ये उन्होंने हम लोगों को बताया अपने क्लास में। राजनीति में भी हमें पहला पाठ मेमोरी बनने में बताया जाता है, सत्य बोलो, अहिंसा वरण करो, खादी स्वदेशी वस्त्र पहनो, ये सब बातें बताई जाती हैं। धर्म में भी यही बताया जाता है। और लंबे समय तक जब राजनीति जो बताया जाता है वो हो जाता है, धर्म लंबे समय तक चले वो धर्म हो जाता है। लेकिन सशक्तिकरण की बात आज आती है इसलिए कि कहीं न कहीं हम असक्त हुए, तभी तो सशक्तिकरण की बात आई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस नर्म को, इस कमजोर नस को देश में पकड़ा कि यह देश तभी चक्रवर्ती इस देश में राजा हुआ है जबकि किसी महान धार्मिक का सहयोग मिला। अगर चाणक्य का सहयोग चंद्रगुप्त को नहीं मिलता तो चक्रवर्ती राजा नहीं कहलाते। अगर दुर्योधन या अगर हमें कृष्ण का साथ अर्जुन को नहीं मिलता, महाभारत नहीं जीतते। अगर विश्वामित्र का साथ राम को नहीं मिलता तो रावण को नहीं मारा जाता, रावण का नाश नहीं होता। जब जब राजनीति ने, राजाओं ने सहारा अध्यात्म का, धर्म का लिया, तब तक धर्म की जय हुआ, विजय हुआ। लेकिन आजादी के 67 साल में हमने पाया कि कहीं न कहीं हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं और स्वयं की ओर, अपने की ओर, अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी पत्नी की ओर हमारा ध्यान ज्यादा चला गया बनस्पत की देश की जनता का। परिणाम हुआ हम धर्म से कटते गए, सिर्फ राजनीति की ओर हम चले गए। राजनीति परिवार में, राजनीति व्यक्ति में सिमट गई और व्यक्ति और परिवार की परिधि में जब राजनीति का चक्र चलने लगा तो स्वतः आज देश की जो हालात है उससे हम सब अवगत हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की राजनीति हमें सशक्त करने के लिए यहां आप लोगों ने बहुत अच्छा क्लास लिया है, लेकिन राजनीति तो आज चल रही है ऊपर से। हम वही करते हैं, हम वही कपड़ा पहनते हैं जो हमारे बड़े नेता पहनते हैं, हम उसी तरह से बोलते हैं जैसे हमारे बड़े नेता बोलते हैं, हम वही स्टाइल देते हैं जो हमारे बड़े नेता स्टाइल देते हैं, अर्थात हम कॉपी करते हैं बड़े नेताओं का, ऊपर के नेताओं का। तो हम ब्रह्म कुमारी रूपी पवित्र संस्था से यह आग्रह विनती करना चाहते हैं कि कम से कम जरूर एक दिन देश के सभी दल के वरिष्ठ नेताओं को यहां बुला करके जो शिक्षा हम लोगों को दिए हैं वही शिक्षा उन लोगों को भी दी जाए जिससे कि गंगा हिमालय से नीचे समुद्र में जाती है उसी तरह से राजनीति भी आज ऊपर से नीचे की ओर आती है। वो नेता अगर हमें भी पाठ पढ़ाएंगे तो हम भी जरूर अमल में करेंगे, ये बहुत जरूरी है। साथियों, भाइयों, बहनों, हम ये देखा है, हम एक मेला लगाते हैं हर साल, जिस मेला में न शराब बिकता है, न गुटखा, न पान, न खैनी जर्दा, जो नशीली चीज है वो नहीं बिक्री होता है। और वहां पर एक ब्रह्म कुमारी का कैंप लगा, धर्मशिला बहने लगाई, और वहां हमने जाना कि क्या चीज है ब्रह्म कुमारी रूपी संस्था, बाबा का क्या देन है। और वहां जब हमने सुना, भागलपुर में, पटना में, कुरसेला में कैंप में गए, वहां से आकर के जब उन लोगों के प्रेरणा से, और मुझे तो लगता है साक्षात ईश्वर की प्रेरणा से मुझे यहां भेजा गया और ऐसी आज्ञा हुई कि तुम जाओ, और यहां आकर के जो देखा एक अजब अनुभव हमने किया, एहसास किया, महसूस किया। हम जो आज स्वर्णिम भारत की कल्पना करते हैं तो कल्पना तो हम यहां देख रहे हैं। अगर यही भारत जो यहां हम माउंट आबू में देख रहे हैं वही देश में लागू हो जाए और स्वर्णिम क्या होता है, इससे बढ़ के स्वर्णिम क्या होता है। कोई शासन नहीं, कोई कहीं तरह का आदेश नहीं, कोई किसी को कोई बता कुछ नहीं रहा है, चल सब कुछ रहा है। हम खाना खा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे, हम यात्रा कर रहे हैं, दिग्दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को आदेश नहीं कर रहा है। सब कुछ सुबह 4 बजे कंप्लीट मिलता है, सफाई का कोई नहीं बताता है, लेकिन सब कुछ कंप्लीट है। बहने भाई जो यहां हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, वो अपना आचरण, अपना विचार इस तरह से है, यही तो स्वर्गिक सुख है, यही तो स्वर्ग है। मुझे तो ये लगता है मन में कभी भी कल्पना हमने स्वर्ग का क्या होगा, आज सच्चा स्वर्ग मैं यहां आकर के देख रहा हूं। इससे बढ़ के कोई, अगर यही बहन सपना जी, बहन शारदा जी, बहन उषा जी, इन लोगों ने 3 दिन में क्लास में जो कुछ बताया, आज जरूरत इस बात की है इन बातों को पूरे देश में फैलाया जाए। और आपकी 8,500 संस्थाएं हैं, यह कैंप राज्यों में लगे, जिला में लगे, उन शाखाओं में भी लगे, और वहां जो स्थानीय राजनेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनको बुला करके ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए। मुझे ये लगता है निश्चित तौर से आने वाला कल भारत का स्वर्णिम भारत बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और प्रभु की इच्छा से, ब्रह्म बाबा की इच्छा से लगता है आपकी संस्था का उदय इसीलिए हुआ। लोग कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। मुझे तो ये लगता है बाबा सिंध में इसीलिए अवतार हुए थे और वहां से माउंट आबू में इसीलिए आए हैं कि धर्म को बचाने के लिए, स्वर्णिम भारत लाने के लिए। आइए हम सब तमाम हमारी तरह ही जो राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, हम सब एक संकल्प लें कि ब्रह्म कुमारी संस्था में अपना संपूर्ण योगदान दे करके कोशिश करें देश में फैले 8,500 संस्थाओं में जो जहां साथी हैं वहां जाकर कोशिश करें और संकल्प लें हम स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। और यह प्रयोग करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दिखाया है अध्यात्म और राजनीति को जोड़ करके देश को आजाद कराया है। हम समझते हैं अध्यात्म और राजनीति दोनों को जोड़ अगर हम देंगे, दोनों का संयोग करा देंगे, दोनों का राज योग करा देंगे तो निश्चित स्वर्णिम भारत इस देश में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद नरेश यादव जी का। आपकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सुनकर हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर आपको हम भाई बहनों में ये खूबसूरती नजर आ रही है, यहाँ के मैनेजमेंट में इतनी सुंदरता नजर आ रही है, उसका श्रेय हम उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव को देंगे कि जिसने हम सब भाई बहनों में ये गुण भरे हैं। इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं सब कुछ करके अपना आप छिपाया। करण करावनहार वो है हमारे द्वारा करवा रहे हैं। एक बार हमारी संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय दादी जानकी जी अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट एड्रेस कर रही थी, तो उसके बाद कुछ मीडिया वालों ने बाद में उनसे प्रश्न पूछे। तो एक मीडिया वाले ने उनसे प्रश्न पूछा, दादी जी आपके कितने फॉलोअर्स हैं? तो दादी जी ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर था। दादी जी ने कहा हमारे यहाँ फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये राजयोग है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सब लीडर्स बनाए जाते हैं। आपको एक सूचना भी देनी है कि इस प्रोग्राम का डीवीडी MP3 बन रहा है, जिसको भी चाहिए इस हॉल के नीचे ऑडियो विजुअल काउंटर है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के इस सत्र के, इस मंच के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी को। आप 1967-62 से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आपने मास्टर्स डिग्री करी है इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंड से। 28 वर्ष ONGC में डिफरेंट पोजीशन पर रहकर अपनी सेवाएं भी दी हैं। 1996 में आपके अंदर आध्यात्मिकता और विश्व सेवा की लगन इतनी बढ़ गई कि आपने, वैसे तो आप जब लौकिक जॉब में थे तो भी सेवाएं देते थे, लेकिन वो सेवा का उमंग इतना बढ़ गया कि आपने ONGC से सुपरिटेंडिंग जियोफिजिक्स की पोस्ट से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर फुल टाइम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया। आप एकेडमी के, जो एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, इसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने कई एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन को भी लीड किया है, पर्यावरण श्री, कई तरह के आपको अवार्ड भी मिले हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस से भी आपको अवार्ड मिला है। आप देश विदेश में कई जगह गए हैं और एनवायरमेंट, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित कई आत्माओं को इस तरह का ज्ञान दिया है। आपने कई एग्जीबिशंस भी बनाई हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस मंच के चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी को कि आए और अपना एड्रेस दें।
ओम शांति। स्वर्णिम भारत के निर्माणकर्ता निराकार परमपिता परमात्मा शिव और उनकी साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मंच पर उपस्थित हमारे विद्वान वक्तागण और सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, काफी समय से आज के इस विषय पर आप विभिन्न वक्ताओं के विचार सुन रहे थे और मैं जब ये सुन रहा था और अभी विशेष करके अंत में जब भ्राता नाथन शाह जी को सुन रहा था या नरेश यादव जी को, तो उन्होंने बहुत अपनी एक शुभ इच्छा भी प्रकट की कि यहाँ पर सब आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं वह भी अगर आए समय प्रति समय और इस ज्ञान को सुने तो वास्तव में स्वर्णिम भारत के निर्माण में और सहयोग मिल सकता है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कुछ नाम जो मेरी बुद्धि में आए और जो यहाँ होकर के गए हैं और जिनका सदा सहयोग रहा है, उनमें हमारे माननीय भ्राता अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी, भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदीपा पाटिल जी, अब्दुल कलाम जी, ये सब तो यहाँ पर होकर गए हैं और समय प्रति समय इस संस्था का काफी लाभ उठाया भी है और हमारा सदा प्रयास रहता है केवल राजनीतिक वर्ग ही नहीं बल्कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो 18-19 वर्ग हैं, सभी वर्गों के अगर यहाँ पर वरिष्ठ ही नहीं सभी कार्यकर्ता आए तो यह भारत निश्चित रीति से ही स्वर्णिम भारत बन जाएगा। और यहाँ पर यह जो कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया गया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनके साथ रहने का मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला। परमात्मा तो निराकार शिव है, जैसा कि आप ऊपर सिंबल देख रहे हैं और शिविर में आपने सुना भी होगा, लेकिन वह किस प्रकार से साकार माध्यम के द्वारा इस सृष्टि को स्वर्णिम बना रहे हैं, यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में मैं 1962 में आया था, इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था उधर, और बाबा के द्वारा जब यह ज्ञान मिलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि बस यह कोई आत्मा, परम आत्मा उनके माध्यम के द्वारा जो बोल रही है वह एक विशिष्ट ज्ञान है और ये ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है जो कि स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। और इसी तभी से ही इस संस्था के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। बाबा की एक बात विशेष थी कि कहते बाद में थे, पहले वो स्वयं पर उस बात पर प्रयोग करके अपने ऊपर धारण करते थे। जैसा कि आज के जो कीनोट एड्रेस बहन जी ने भी बताया, विजुअलाइज करें स्वर्णिम भारत को और अपने को ये भी विजुअलाइज करें कि किस प्रकार से हमारे अंदर यह परिवर्तन आ रहा है। ये हॉल भी जिसमें आप बैठे हैं हार्मनी हॉल है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक पहला तो यही टीचिंग है कि स्वयं को बदलो, संसार अपने आप ही बदल जाएगा। और स्वयं को बदलने से तात्पर्य कि अपने अंदर हम हार्मनी क्रिएट करें। हार्मनी यानी कि हमारे दिमाग, दिल और हाथ, हेड हार्ट एंड हैंड के बीच में जो आज हार्मनी सुसंवादिता नहीं रही है, पहली आवश्यकता उस सुसंवादिता की है। जब हमारे अंदर इंटरनल हार्मनी होगी तो बाहर समाज के अंदर भी हार्मनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरनल हार्मनी जो है केवल इंटरनली नहीं, ये लगभग चार स्तर पर एग्जिस्ट करती है। एक तो ये हमारी आंतरिक हार्मनी, और साथ में परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं, जो समाज में रहते हैं उसके साथ हार्मनी, साथ में पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं उनके साथ सुसंवादिता, और चौथी हार्मनी है प्रकृति के साथ। और प्रकृति के साथ हमारी हार्मनी नहीं रही है, इसीलिए इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के रूप में, मौसम परिवर्तन के रूप में पूरा संसार फेस कर रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारी आंतरिक हार्मनी नहीं रही है। तो आज पहली आवश्यकता तो यह है अपने अंदर आंतरिक हार्मनी पैदा करने की, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो राजयोग शिविर के लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं प्रातःकाल में विशेष करके, वो इसीलिए है कि हमारे हेड हार्ट और हैंड के बीच में ये इंटरनल हार्मनी ऐसी पैदा हो। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा के साथ कि उनके अंदर इंटरनल हार्मनी इतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती थी कि बाबा के सम्मुख जब भी कोई जाता था बस बाबा दृष्टि देते थे और वह अपने देह से न्यारा हो जाता था, विदेही हो जाता था। क्योंकि जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, आज दुख अशांति हैं, संसार की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का मुख्य कारण ये पांच विकार हैं। तो बाबा में वो शक्ति थी, साधारण मानव था। आपने सुना होगा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जब लगभग 60 वर्ष की उम्र में उन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य साक्षात्कार हुए, उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने सारी अचल अचल संपत्ति इस ईश्वरीय सेवा में लगा दी। तो उनके अंदर इतना शक्ति का संचार हुआ कि जब भी उनके सम्मुख जाते थे बस देह से न्यारे, बस हम आत्मा हैं और ये आत्मा इस शरीर को चला रही है। अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा मोमेंट्री चेंज कर देना जो भी व्यक्ति सम्मुख आता था, यह साधारण बात नहीं। यही प्रयास वर्तमान समय हमारी बहनें भी कर रही हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियां और सब लोग, कि केवल लेक्चर का ही ज्ञान न हो बल्कि आपको ये अनुभूति हो कि वास्तव में आप सब आत्माएं हैं और ये देह धारण की है हमने इस शरीर को के द्वारा कर्म करने के लिए। इसलिए एक तो ये है अंदर की हार्मनी। दूसरी बात हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत अच्छी दी है, वो दी है एक दो तीन सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया है जियो और जीने दो। वास्तव में आज संसार में हम अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरों को चलाना चाहते हैं, और इस कारण से क्या होता है, वो हर एक कोई हमारी इच्छा से जब नहीं चलता है तो हमारे अंदर क्रोध, आवेश, ये सब ईर्ष्या, कई प्रकार की बातें पैदा होती है। तो जियो और जीने दो। आज संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं, सास बहू की हो, बाप बेटे की हो, भाई भाई की, बिजनेस पार्टनर की, वो यही है हम दूसरे को जब अपनी इच्छा से चलाते हैं। एक आवश्यकता ये है, हाँ हम गाइड करें, अपना विचार दें, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि सारे दूसरे हमारी इच्छा से चलेंगे, और यही डिसहार्मनी पैदा करती है। तो जब इससे जब ये सिद्धांत हम अपने जीवन में लागू करते चलते हैं, मन की बहुत शांति रहती है, किसी के प्रति क्रोध, आवेश, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष वो नहीं होती है। इसको आप अजमा के देखिए। तीसरा सिद्धांत एक है वसुधैव कुटुम्बकम का। थ्योरेटिकली तो हमने ये समझा और इस बात को समझा, वसुधैव कुटुम्बकम माने वसुधा ही परिवार है, कुटुम्ब है, हिंदी चीनी भाई भाई या हिंदी जापानी या सब जो, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है। वसुधा में केवल मनुष्य ही नहीं आते, वसुधा के अंदर सब आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, प्रकृति भी, पांच तत्व भी, पेड़ पौधे भी। इसीलिए वसुधा हमारी कुटुंब है। इसको अगर हम यथार्थ रीति से समझेंगे, देखिए पेड़ पौधे होते हैं हा? बस धरती माता के साथ लगे रहते हैं और जीवन पर्यंत वहीं से उन्हें सब कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, बढ़ते रहते हैं और फिर सारे संसार को वो सब देते हैं, अनाज है, फल फूल आदि आदि। ऐसे ही बच्चा भी, मनुष्य का बच्चा भी जब पैदा होता है, बस शुरू में माँ ही उसका संसार होता है, माँ से ही उसे सब प्राप्ति होती है। तो ये पेड़ पौधे जो है ये हमारे परिवार के यंगेस्ट मेंबर हैं, सबसे छोटे सदस्य हैं। ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम उनकी पालना करेंगे, उनके साथ हमारा स्नेहवत व्यवहार रहेगा, तो ये संसार अपने आप ही स्वर्णिम बनता चला जाएगा। क्योंकि उनका विशेष रोल है वो तो आप सब जानते ही हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है कैसे चलना सीखता है, दो हाथ दो पैर से। तो ये पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं, चौपाए हैं, ये हमारी फैमिली के वसुधैव कुटुम्बकम के सेकंड यंगेस्ट मेंबर हैं। वो पशुओं के साथ भी हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम मनुष्यों का आपस में एक दूसरे के प्रति हम एक्सपेक्ट करते हैं, लवफुल प्रेम पूर्ण व्यवहार। और उसके बाद तो जब मनुष्य बड़ा होता है, हम सब इस वसुधैव कुटुम्बकम के एल्डेस्ट मेंबर हैं, बड़े सदस्य हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इन छोटे सदस्यों के प्रति हमारा संपूर्ण प्यार हो, आदर हो, स्नेह हो, उनकी पालना हम वैसे ही करें जैसे अपने परिवार के सदस्य की करते हैं। तो इस रीति से ये प्रकृति, पशु पक्षी जीव जंतु जो पूरी इकोलॉजिकल साइकिल के एक अभिन्न अंग हैं, ऑटोमेटिकली ये संसार स्वर्णिम हो जाएगा। स्वर्णिम संसार में केवल मनुष्य ही स्वर्णिम नहीं, आवश्यकता प्रकृति, मौसम, हर चीज स्वर्णिम हो तभी तो हम स्वर्णिम संसार का आनंद ले सकेंगे। एक साथ ही साथ और आवश्यकता है, मनुष्य जब परिवार में रहता है अक्सर करके क्या होता है कि हमारा मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं कई बार क्रोध के रूप में ज्यादा आ जाती हैं, हमारी बातें जब नहीं मानी जाती, जैसा कि आपको लेक्चर्स में बताया जा रहा था। तो आवश्यकता यह है बड़ों के प्रति आदर सत्कार, छोटों के प्रति भी प्यार, लेकिन साथ साथ कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है संसार में। हमने देखा बाबा के पास इतना बड़ा यज्ञ चलाते थे बाबा, लेकिन बहुतों से गलती होती थी, लेकिन बाबा को कभी भी क्रोध में नहीं देख रहा, कभी भी उन्हें ऐसा कि इन्हें इसे सिखाया जाए ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से। और जो बात बाबा प्रेम से बात कह देते थे दूसरे पर, जीवन पर्यंत उसकी छाप लग जाती थी। कैसे? क्षमा की भावना। जिंदगी में अगर क्षमा का ये संस्कार होता है, जो भी महापुरुष हो गए जिनको आप देखिए, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा, जो वो सब तो होके चले गए, मैंने तो प्रत्यक्ष बाबा में देखा, बस कोई भी बात होती थी बाबा कभी भी दिल में नहीं रखते थे किसी की भी बात, और उसे अच्छा चलो जो हुआ बीत गया, आगे से ऐसा नहीं करना। जिंदगी का सफर, बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये जीवन में अक्सर करके यही होता है, कईयों की बात जो दिल में रह जाती है वो। और अगला सिद्धांत एक है वो ये है कि मनुष्य की आदत है, ह्यूमन नेचर, कि हमें दूसरों में दोष जल्दी दिख जाते हैं, अपने गुण दिखते हैं। यहां का सिद्धांत यह है अपने के अंदर परिवर्तन करो। वो बड़ा अच्छा इसी पर कहा है, और पहला ही ना कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। बाहर का ना? प्रॉब्लम हमारे अपने साथ होती है। जैसा हमारा दृष्टिकोण, हमने लाल चश्मा लगाया होगा हमें सारा लाल लाल नजर आएगा, हरा चश्मा लगाया होगा हरा। तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है हमें संसार वैसा ही प्रतीत होता है। आज आवश्यकता यह है अपना दृष्टिकोण बदलने की। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही सिद्धांत है, सबसे पहले अपने को चेंज करो, बदलो, ऑटोमेटिकली ये संसार बहुत खुशनुमा बहुत अच्छा नजर आएगा। और साथ ही साथ जब सबको हम यहाँ पर भी बुलाया गया, यहाँ भी जो स्टेज पर बैठे हैं सबको आदर करने के लिए फूल वगैरह दिया गया। बाबा भी जब क्लास में आते थे फूल लाते थे, और बाबा कहते थे अक्सर करके, देखो ये तो जड़ फूल हैं, थोड़ा खुशबू देंगे, लेकिन मैं चैतन्य फूलों को देख रहा हूँ। आप सब, हम सब आत्माएं चैतन्य फूल हैं, जो चैतन्य खुशबू, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये सब खुशबू जो संसार में फैलाते हैं। आज आवश्यकता यह है हम सबको चैतन्य फूल बन करके परमपिता परमात्मा पर अर्पण होने की। अर्पण का मतलब ये नहीं कि कोई सब छोड़ के यहाँ आ जाए, बल्कि मन से जितना हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम होगा बस उतना हम चैतन्य फूल बनते जाएंगे, और उतना ईश्वर के प्रति हमारी भावनाएं और सजग होती जाएंगी, और ये संसार स्वर्णिम बनता जाएगा। तो इसीलिए फूल जो है ना, ये प्रतीक है हम सब आत्माओं के चैतन्य गुणों का, शक्तियों का। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। बाबा हमेशा इस बात को कहा करते थे, देखो जीवन है, जीवन में हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये तो आएगी ही, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा बताया भी जा रहा था, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, आदि आदि, प्रकृति का नियम है। लेकिन हमारी मानसिक अवस्था ऐसी हो जो ऐसा नहीं कि जीत में तो बहुत ऊपर खुश चढ़ गए और कुछ हार हुआ, हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, बिल्कुल रॉक बॉटम डाउन आ गए और बिल्कुल जीवन में उदासी आ, नहीं, हर परिस्थिति में समान रहे, जो गीता में भी कहा है, इन सब परिस्थिति, यही योगी की अवस्था है। तो आज आवश्यकता ये है पहले, सबसे पहले अपने को बदले, अपने को बदलने के साथ साथ ऑटोमेटिकली परिवार बदलेगा, परिवार के साथ साथ समाज, और फिर ये पूरा भारत भी, भारत के साथ विश्व, और संपूर्ण विश्व जब स्वर्णिम हो जाएगा तो और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप यहाँ से जब जाएं तो यही संदेश लेकर के जाएं कि मुझे सबसे पहले बदलना है, मैं बदलूंगा, संसार बदलेगा। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी का, और साथ ही साथ मैं आप सबका और मंच पर उपस्थित हमारे वक्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको इतने अनमोल रतन, कहेंगे ज्ञान के रतन, हम सबको दिए के लिए। शारदा बेन जी, हमारे ऑनर्ड गेस्ट का शॉल और प्रभु प्रसाद की तरफ से ऑनर दे रही हैं। हमारे अर्जुन लाल जिंगर जी का, महेंद्र कुमार आहूजा जी, नथन शाह जी का भी स्वागत सम्मान दिया गया, और अभी मिस्टर नरेश यादव जी का भी सम्मान दे रहे हैं।
तो आप सबको मैं फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ कि 6:30 बजे वैलिडिटी सेशन रहेगा और एक और अनाउंसमेंट है, 2 मिनट बैठेंगे और परमात्मा की याद में पूरा करेंगे।
तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।